ओम शांति। 8:10:75 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठदारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बचाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे, क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा, रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते ही है। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा, रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियां अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी, यह सब मणियां बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाश में बनाती है, चारों कोने के अंधकार को दूर करती है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियां हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी, हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्मा तक नहीं, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर, इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे, एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के साकार अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मनिया बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। यह विशेष मनिया सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती है। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नशीन मणियों की विशेषता सुनी? ऐसी विशेष मणियां बहुत थोड़ी दिखाई दी। यह थी फर्स्ट नंबर की मणियां व फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार। उन्हों की विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वह सब मणियां भी अपनी चमक चारों ओर फैला रही थी, लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी, लेकिन गले के हार की मणियों की किरणें सर्व समान नहीं थी, कोई छोटी कोई बड़ी थी, कोई किरणें बेहद तक कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी। लेकिन बाप समान नहीं थी, सर्व गुणों के रंग समाए हुए थे लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और संयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा गले की आवाज द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना, अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे। परंतु मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा की सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने वाले स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज्यादा थी, माला में तो ज्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मनिया ताज की मनियों से बहुत ज्यादा थी। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। अनोखी विशेषता और आधार क्या था? बाहें सदा सहयोग की व मददगार बनने की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना? इनों की विशेषता क्या देखी? किरणों व चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इनों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्म न कि सब्जेक्ट में फुल पास। सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी। बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं। समझा तीन प्रकार का श्रृंगार? तो आज तीन रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मनियों को बाप दादा के सदा स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सारांश है। पहली पॉइंट है, पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मनिया, वे विशेष आत्माएं हैं जो बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती है। उनकी सर्व शक्तियां रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुण रूपी रंगों को समाये हुए चारों ओर बेहद विश्व तक पहुंचती है। ऐसी आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। दूसरी पॉइंट है, दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले के हार की मणियां। वे समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलती तो है, परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं है। सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं है। वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास, परंतु मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं है। अच्छा, आठ दस पचहत्तर की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। सर्व को संतुष्ट करने वाले पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा संगम युगी वत्सों के प्रति बोले, आपको अपना संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूँ। इसलिए आप में अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का श्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का श्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का श्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो घोर महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियों का होना यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। कभी हर्षित कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं, यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। तो अब यह भी श्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है, समझा? अच्छा, महावाक्यों का सार। पहली पॉइंट है, हमारा अंतिम स्वरूप है महाकाली अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। दूसरी पॉइंट है, तीव्र पुरुषार्थ का श्लोगन है कि जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वातावरण वैसा ही बनेगा और सभी उसे फॉलो भी वैसा ही करेंगे। एक संकल्प भी व्यर्थ जाना यह भी भूल है। ऐसी महीन चेकिंग अब करनी है। चौथी पॉइंट है, अपनी स्मृति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कमजोर आत्माओं की स्थिति भी पावरफुल बन जाए। अच्छा, ओ शक्ति।